तो मनु महाराज के वंश की कथा चल रही है, तो उसमें चलते चलते एक अवीक्षित नाम का विचित्र प्रकार का व्रत लिया हुआ उस वंश में एक राजकुमार हुआ। अब उस वो राजकुमार था, उसने विचार कर लिया कि अपमानित स्त्री के साथ कैसे विवाह करूं, और वो स्त्री कहती है कि आपका शौर्य आपका पराक्रम कभी पराजित नहीं हुआ है, और आपने जब मुझे एक बार स्वीकार कर लिया अब मैं आपको अस्वीकार नहीं करती। तो वो तपस्या करने चली गई, पीछे से उनकी मां ने एक व्रत किया, उसका नाम था किमिच्छक, कि बेटा तुमको मेरी रक्षा करनी है, कि ठीक है मां जो भी मांगने आए उसको दे। राजकुमार ने कहा ठीक है मां आप व्रत करो मैं दे दूंगा। उस व्रत के अंदर उसका बाप ही आया, कहने लगा भाई देख तेरा बाप नहीं यहां का राजा नहीं, मैं याचक बनकर के आया हूं, मैं मांगू वो देनी पड़ेगी। पिताजी आप व्रत का अनुष्ठान कर रहे हैं ना, व्रत की रक्षा कर रहे हो, मुझे पोता चाहिए। अब वो धर्म संकट में पड़ गया, या तो तेरी मां की आज्ञा है उस आज्ञा की प्रतिज्ञा की तो अवहेलना कर दे, और या फिर तुझे विवाह करना पड़ेगा। बेटे ने कहा पिताजी मैं तो धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन अब तो मुझे बड़ों के सामने अपनी बात तो हटानी पड़ेगी। ऐसी बात हां भर दी। अब एक दिन राजकुमार अवीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। शिकार खेलते खेलते वो गहन जंगल में चला गया। कुछ चीज ऐसी शौक की होती है कि उस शौकीने के अंदर आदमी आगे पीछे सब भूल जाता है। शिकार भी एक शौक है, जैसे ताश का शौक होता है तो ताश खेलते खेलते भूख प्यास समय जरूरी काम सब भूल जाता है, वो ताश की बाजी में लगता है। जैसे किसी भी प्रकार के व्यसन में आदमी चला जाता है तब फिर वो उस व्यसन के अंदर ही डूब जाता है। तो ये शिकार खेलना भी व्यसन। तो हिरण व्याघ्र वराह इन जंतुओं को मारते 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 बहुत गहन जंगल में पहुंच गया। वहां किसी स्त्री के रोने की आवाज आई, वो बड़े जोर जोर से क्रंदन कर रही थी, त्राहि माम बचाओ बचाओ बचाओ, कोई शूरवीर है तो बचाओ, कोई दयावान है तो बचाओ, मैं एक अबला बड़े संकट में पड़ी हूं। राजकुमार अवीक्षित वहां घोड़े पर बैठे जा ही रहा था, उसने आवाज सुनी तो उसने कहा डरो मत, ये संसार वीरों से खाली नहीं है, जो भी कोई अन्याय करेगा उस अन्याय को दंडित करने के लिए अभी क्षत्रिय जीवित है। अपने घोड़े को उधर ही दबाया जिधर से आवाज आ रही थी। उस निर्जन वन में हो क्या रहा था कि दनु का पुत्र था दृढ़केश, उसने एक स्त्री को पकड़ लिया और वो विलाप कर रही थी, और वो बार बार कह रही थी अरे दानव तू मुझे छोड़ दे, मैं महाराज करमधन के पुत्र अवीक्षित की पत्नी हूं, तू नीच दानव मुझे नहीं ले जा सकता। जब उस राजा को या राजकुमार को तुम्हारे कृत्य का पता चलेगा तो सामने चाहे गंधर्व आ जाए, चाहे गुह्यक आ जाए, कोई आ जाए, वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। उनका क्रोध बड़ा असह्य होता है, इंद्र से भी ज्यादा पराक्रमी है। और करणधम को पता चलेगा कि मेरी पुत्र वधु आज संकट में पड़ी है और दानव उसको ले जा रहा है, तब तो तुम्हारी मृत्यु ही समझना। इस प्रकार से वो रो रही थी, इतने में अवीक्षित वहां पहुंच गए, क्योंकि इसकी वो पत्नी जो राजकुमारी स्वयंवर में जिसको इसने स्वीकार किया था, उसने कहा मैं पत्नी बनूंगी तो अवीक्षित की बनूंगी, वो तपस्या कर रही थी। अब यहां से इधर तो उसका यूं ही पहुंचना हुआ अवीक्षित का, उधर वो रोना धोना चालू हुआ था राक्षस के द्वारा। इतने में वो वहां पहुंच गया अवीक्षित। राजकुमार ने देखा कि कन्या है, बड़ी सुंदर है, श्रेष्ठ लक्षणों वाली है, आभूषण वगैरह से इसकी शोभा और निराली है, और एक हाथ में डंडा लिया हुआ दनु का पुत्र दृढ़केश इसे पकड़ रखा है, वो त्राही त्राही कर रहा है, त्राही त्राही कर रही है। अवीक्षित ने पास में आकर कहा डरो मत, अब मैं आ गया हूं। उस दानव से कहा ए दुष्ट छोड़ दे इसे, नहीं तो तू अपने मृत्यु को बहुत जल्दी बुला लेगा। भूमंडल के समस्त राजा जिनके प्रताप के सामने सिर झुकाए रहते हैं, उन महाराज करणधम के राज्य में कौन दुष्ट जीवित रह सकता है। युति ने उस राजकुमार को देखा और वो युति बार बार कहने लगी मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, यह दुष्ट मुझे हर करके ले जा रहा है, हे दयावान, मैं महाराज करणधम की पुत्रवधु हूं और अवीक्षित की पत्नी हूं। देखो दोनों ने एक दूसरे को पहचाना नहीं था, और वो अवीक्षित को ही कह रही है मुझे बचाओ, हे दयावान, मैं महाराज करणधम की पुत्रवधु और अवीक्षित की पत्नी हूं। देखो मैं सनात हूं तो भी इस वन में मैं अनाथ की तरह रो रही हूं, और ये मुझे बलपूर्वक ले जाना चाहता है। यह सुनकर अवीक्षित उसकी बात पर विचार करने लगे, ये जंगल में रहने वाली ये मेरी स्त्री मेरे पिता के पुत्र वधु कैसे हो सकती है। खैर अभी तो ये संकट में है, इसको संकट से छुड़ाया जाए, फिर बाद में मैं समझूंगा। पीड़ितों की रक्षा के लिए ही क्षत्रिय के हाथ में हथियार सुशोभित होते हैं। अवीक्षित ने उस खोटी बुद्धि वाले दानव से कुपित होकर कहा पापी, तू जीवित रहना चाहता है या मरना चाहता है? यदि मरना चाहता है तो इसको तू ले जा, और यदि जीवित रहना चाहता है तो इसको छोड़ दे। उसके डरावने शब्द से दानव कांपने लग गया, अंदर तो डर गया पर बाहर से वो देखा कि ये मेरा क्या कर लेगा। कन्या को तो छोड़ दिया और डंडा लेकर के अवीक्षित की ओर दौड़ा। फिर उन्होंने भी बाणों की वर्षा कर दी। वो दानव दृढ़केश अत्यंत मद से मतवाला था, राजकुमार के बाणों से रोके जाने पर भी दानव दृढ़केश अत्यंत मद से मतवाला हो रहा था। राजकुमार के बाणों से रोके जाने पर भी उसने 100 किलो से युक्त वह डंडा उन पर मारा, किंतु राजकुमार ने अपनी ओर आते हुए उस डंडे के बाण मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर दानव ने कुपित होकर राजकुमार पर जो हथियार चलाया वह सब उन्होंने अपने बाणों से काट गिराया। डंडे और हथियारों के कट जाने के बाद उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह मुक्का तानकर राजकुमार की ओर दौड़ा। राजकुमार ने वेतस पत्र नाम के एक बाण से उसका सिर काट दिया और उस दुराचारी दानव के मारे जाने पर देवताओं ने अवीक्षित को बड़ा धन्यवाद दिया और कहा कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि हे देवताओं, मैं एक धर्म संकट में पड़ा हुआ हूं। मैंने प्रतिज्ञा तो यह की थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, पर मेरी मां किमिच्छक नाम के व्रत में बैठ गई थी, उसको मैंने वचन दिया और पिता ने आकर के ही मेरे सामने वरदान मांग लिया कि मुझे पोता चाहिए। अब मैं पिता का प्रिय करने के लिए अपने लिए महापराक्रमी पुत्र मांगता हूं। देवता बोले, वाह राजकुमार, कैसा सुयोग बैठा है जिसका तुमने अभी उद्धार किया है। बस इसी कन्या के द्वारा तुम्हारे एक महान चक्रवर्ती सम्राट होगा। राजकुमार ने कहा, हे देवताओं, राजाओं से परास्त होकर मैंने विवाह का विचार ही छोड़ दिया था, किंतु पिता के द्वारा सत्य के बंधन में बांधे जाने पर मैं अब पुत्र की अभिलाषा करता हूं। पहले राजा विशाल की कन्या को मैंने त्याग दिया था, किंतु उसने मेरे लिए किसी दूसरे को, दूसरे पुरुष को पति बनाने का विचार छोड़ रखा था। अतः उस त्यागमयी देवी को छोड़ करके क्रूर हृदय वाला मैं दूसरी स्त्री से कैसे विवाह कर सकता हूं। देवता बोले, यही तो बात है, तुम अभी पूरी बात समझे ही नहीं हो। यह कन्या वही है जो राजा विशाल की कन्या थी, तुमने जिसको एक बार स्वीकार किया था और जिसकी तुम बराबर प्रशंसा करते हो। यह तुम्हारी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी और इसी तपस्या के प्रभाव से कैसा सुयोग बनाए तुम्हारा इस वन में आना हुआ है और तुमने इसे यहां राक्षस से छुड़ाया है। ये राक्षस कोई मामूली राक्षस नहीं था, दानव मामूली दानव नहीं था। इसके गर्भ से तुम्हारे चक्रवर्ती और वीर पुत्र उत्पन्न होगा, वह सातों द्वीपों का शासक तथा सहस्रों यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। करंधम कुमार अवीक्षित से यूं कहकर देवता तो चले गए। तब उन्होंने उस स्त्री से कहा, बोलो कहो क्या बात है। अब अपनी सब कथा सुनाओ। अवीक्षित ने पूछा, भीरू कहो क्या बात है। तब उस कन्या ने अपना पूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा, नाथ, आपने जब मुझे त्याग दिया तो इस जीवन से मुझे वैराग्य हो गया। मैं बंधु बांधवों को छोड़कर वन में चली आई। हे वीर, यहां तपस्या करते करते मैंने अपना शरीर सुखा दिया। मैंने विचार किया कि जब आपने मुझे त्याग दिया है तो अब फिर मैं यहां संसार में रहकर क्या करूं। मैं भी अपने शरीर को तपस्या के द्वारा समाप्त करने की इच्छा करने लगी। उस समय देवताओं के दूत ने आकर मुझे कहा कि अरे ऐसा मत करना, ये तो घोर अन्याय है, ये तपस्या का अपमान है। तपस्या तो सदा शुभ काम के लिए की जाती है। तुम्हें तो महाबलवान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा जो देवताओं को तृप्त करेगा, मनुष्यों को यहां पर आनंदित करेगा, सब असुरों का संहार करेगा। ऐसा तप कौन कर सकता है? इस तपस्या का सदुपयोग करो। तुम तपस्या करते शरीर का नाश चाहती हो, ये तो महान अपमान होगा, पाप ही होगा। इस प्रकार जब वे देवदूत चले गए, तब फिर मैंने अपनी तपस्या को आपके लिए मोड़ दिया। मैंने इस देह का त्याग नहीं किया। इधर वैशालिनी के ये वचन सुनकर तथा किमिच्छक व्रत में की हुई प्रतिज्ञा के समय पिता को दिए हुए वचनों को याद करते हुए अवीक्षित ने उस कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, देवी उस समय शत्रुओं से पराजित होने के कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था और अब फिर शत्रुओं को जीतकर ही मैंने तुम्हें पाया है, अब बताओ मैं क्या करूं? बस ऐसी इनकी बात हो रही थी, उसी समय में मैं नाम का एक गंधर्व वो आया है। उसके साथ बहुत सी अप्सराएं थी और बहुत से अन्य गंधर्व भी थे। उन सब के साथ वो मैं गंधर्व आया है। गंधर्व बोला, राजकुमार तुम नहीं जानते, यह कन्या वास्तव में मेरी पुत्री भामिनी है। महर्षि अगस्त्य के शाप के कारण से ये राजा विशाल की पुत्री हुई थी। बचपन में खेलते समय इसने अगस्त्य मुनि को कुपित कर दिया। ये बच्ची थी, इसको पता नहीं था। ऋषि अगस्त्य अपने तपस्या में बैठे हुए थे, इस बच्ची ने वहां कोई चंचलता की, तो अगस्त्य मुनि का तपस्या से ध्यान घटा और कुपित हो गए। साप देते हुए कहा, जा तू मनुष्योनि में उत्पन्न होगी। मैं भी वहीं था, मैंने कहा, ऋषिवर ये बच्ची है, इसकी चंचलता से तो आपको खूब प्रसन्न होना चाहिए था, आपने तो इसको गंधर्व से मनुष्य बना दिया। मनुष्य शरीर में तो कई प्रकार के कष्ट होते हैं, जन्म में भी कष्ट होता है और हर प्रकार से कष्ट होते हैं, मरने में भी कष्ट होता है, दुखों से तो भरा हुआ रहता है मानव जीवन, आपने इसको मनुष्योनि में क्यों भेज दिया? ऋषि प्रसन्न होकर कहने लगे कि देखो गंधर्व, मैंने बहुत सोच समझ के काम किया है, ये मानव शरीर है, ये मानव शरीर बहुत कीमती है। तुम लोग गंधर्व हो, केवल अपने शरीर सौंदर्य में ही रहते हो, केवल भोग विलास में ही रहते हो, ऊंचे लोकों में ही रहते हो, मानव शरीर की तुम महिमा जानते नहीं हो। मानव शरीर में जो भी कष्ट होता है, उस कष्ट के अंदर भी बहुत बड़ा ज्ञान छिपा रहता है। गंधर्व ने कहा, हे ऋषिवर आप प्रसन्न हो जाइए, ये निरी बालिका है, इसको भले बुरे का विवेक नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कृपा करो और इसको नीचे मानव शरीर में क्यों भेजते हो? मां मुनि ने फिर हंस करके कहा, हमारी पूरी बात समझ करके विचार करो, तुम लोग मानव शरीर की महिमा जानते नहीं हो। मैंने गंधर्व से इसको मानव शरीर में भेजा है, ये मेरी कृपा है, ये शाप थोड़ा ही है। ये शाप नहीं वरदान है, क्योंकि बच्ची है, बालिका है, इसको कोई विवेक नहीं है। इसलिए मैंने बहुत अच्छा शाप की जगह वरदान दिया है। आपको शाप लगता है, अब दे दिया सो दे दिया, अब ये तो टलेगा नहीं। ये महर्षि का शाप था जिससे मेरी पुत्री भामिनी राजा विशाल के भवन उत्पन्न हुई। इसके लिए ही मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। आप मेरी इस कन्या को ग्रहण कीजिए, इससे आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। राजकुमार ने देखा कि इस स्त्री के पीछे इतनी इतनी कथाएं हैं। मेरे पिता ने उस समय ही कहा था, मेरी मां ने जो व्रत किया है शायद इसीलिए किया होगा। फिर इधर मयासुर के समय अचानक संयोग हुआ है, अब ये गंधर्व बोलते हैं, अब मुझे हर प्रकार से कोई किसी प्रकार का आग्रह न रखते हुए इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता से उसको स्वीकार किया और वहां विधि पूर्वक पाणि ग्रहण हुआ। तुम्बरु ऋषि ने हवन करवाया, देवता गंधर्व खूब गीत गाते रहे, फूलों की वर्षा हुई, देवताओं ने बाजे बजाए और फिर दोनों दंपति महात्मा मय के साथ गंधर्व लोक में चले गए। अवीक्षित अपनी पत्नी के साथ कभी अत्यंत रमणीय नगरोद्यान में, कभी पर्वत के उपत्यका में विहार करने लगे। मुनि गंधर्व किन्नर लोग उन दोनों के लिए अनेक प्रकार की भोजन सामग्री, चंदन वस्त्र माला, पीने योग्य पदार्थ आदि उत्तम वस्तुएं प्रस्तुत किया करते थे। मनुष्यों के लिए दुर्लभ गंधर्व लोक में अवीक्षित इस प्रकार भामिनी के साथ विहार करते रहे और कुछ समय के बाद भामिनी ने वीर अवीक्षित के पुत्र को जन्म दिया और उस महापराक्रमी पुत्र का जन्म होने पर उससे कार्य सिद्धि की अपेक्षा रखने वाले गंधर्वों के यहां बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसमें सब देवता और निर्मल देवर्षि भी पधारे। पाताल से नागराज, शेष, वासुकी, तक्षक ये सब आए। देवता, असुर, यक्ष, गुह्यक ये जो प्रधान प्रधान थे वो भी आए। तुम्बरु ऋषि ने उस बालक का स्वस्ति वाचन करवाया, जात कर्म संस्कार करवाया, स्तुति करवाई और फिर उन्होंने घोषणा की, हे आयुष्मान, तुम चक्रवर्ती महापराक्रमी महाबाहु एवं महाबलवान होकर समस्त पृथ्वी का शासन करोगी। हे वीर बालक, ये इंद्र आदि लोकपाल और महर्षि सब तुम्हारा कल्याण करें, तुम्हें शत्रु नाशक शक्ति प्रदान करें। पूर्व दिशा में बहने वाले मरुत जिनमें धूल का समावेश नहीं होता है तुम्हारा कल्याण करें। दक्षिण दिशा के निर्मल मरुत तुम्हें स्वस्थ रखें। पश्चिम के मरुत उत्तम पराक्रम देवे और उत्तर के मरुत तुम्हें उत्कृष्ट बल प्रदान करें। इस प्रकार स्वस्ति वाचन के पश्चात आकाशवाणी हुई। पुरोहित ने मरुत तव ऐसा बार बार उच्चारण किया तो यह बालक पृथ्वी पर मरुत के नाम से विख्यात होगा। मरुत भूमंडल के सब देवता, सब राजा लोग इसकी आज्ञा के अधीन रहेंगे, सबका ये सिरमौर रहेगा। भूपालों को जीतकर महापराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट होगा। सात द्वीपों वाली समूची पृथ्वी का उपभोग करेगा। यज्ञ करने वाले राजाओं में ये प्रधान होगा तथा समस्त नरेशों में इसका शौर्य पराक्रम सबसे अधिक होगा। देवताओं में से किसी ने यह आकाशवाणी की थी, उसे सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। उसके पश्चात राजकुमार अवीक्षित अपने प्रिय पुत्र को गोद में लेकर गंधर्वों के साथ अपने पिता के नगर में आए। पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनकी जो भारिया थी वैशालिनी उसने अपने ससुर के चरणों में प्रणाम किया और वो जो पुत्र था अभीक्षित का पुत्र वो पिता की गोद में रखते हुए कहा कि पिताजी माता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा की और आपने जैसा मुझे आदेश दिया ये आपका पौत्र है ये आपकी गोद में मैं समर्पित करता हूं। यूं कहकर पिता को बड़ा प्रसन्न किया और फिर उस पुत्र के जन्म का सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज करणधम के नेत्रों में खूब आनंद के आंसू आए। अपने पौत्र को बार बार छाती से लगाते हुए अपने भाग्य की प्रशंसा की और कहा कि यहां आने वाले सभी गंधर्वों का मैं स्वागत करता हूं। और फिर उसके बाद वहां सब प्रकार से आनंद ही आनंद रहेगा।